नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साल 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा, खेलों और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में उपलब्धियों का वर्ष रहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक। अरावली पर्वत माला मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढ़ा और सिरोही जिले के माउंट आबू में कल से शरद महोत्सव की शुरुआत होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया।
देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए।
श्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जज्बे की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ लोगों ने अपने संदेश और सुझावों को साझा किया, जो सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के लिए भी वर्ष 2025 स्मरणीय रहा। श्री मोदी ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाले पैरा एथलीट्स की भी प्रशंसा की।
2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया, भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया, एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया, पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धि हासिल की। श्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति का जिक्र करते हुए बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा।
अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई आशाओं और नए संकल्पों के साथ 2026 में प्रवेश के लिए तैयार है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। उन्होंने सभी को वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी। प्रदेश में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह नजर आया। जयपुर में अपने आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की प्रगति का सफर हमसे साझा करते हैं। ये कार्यक्रम देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दौरान विधायक डॉ गोपाल शर्मा, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा समाज सहित कई जन प्रतिनिधि और आम जन उपस्थित रहे। पाली, भीलवाड़ा सहित अन्य जिलों में भी मन की बात कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक सुना। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास शांति विधेयक को नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े विज्ञान सुधारों में से एक बताया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 4.4 गीगावाट से बढ़कर आज लगभग 8.7 गीगावाट हो गई है। उन्होंने कहा कि शांति विधेयक भारत के परमाणु क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हाल ही में हुए बदलाव से उत्पन्न चिंताओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एजी मसीह की अवकाशकालीन पीठ कल इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप अरावली पहाड़ियों की पुनर्परिभाषा को लेकर हुए जनविरोध के बाद आया है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और इसके स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण, खान और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भीलवाड़ा और पाली सहित कई स्थानों पर इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से जन जागरण रैली रखी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के विचार से ही विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने आज कोटा में एक सामाजिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को अधिक शिक्षित और मजबूत बने इस तरह के प्रयास करने चाहिए। आज भारत के युवा विश्व के हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं।
आज भी दुनिया के अंदर भारत का नौजवान अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नेतृत्व कर रहा है और जैसे जैसे भारत की पीढ़ी और शिक्षित होगी, टेक्नोलॉजी में होगी, प्रोफेशनल साइड में होगी, दुनिया के अंदर भारत का नौजवान ही नेतृत्व करेगा। आप दुनिया के जितने भी देशों को देखोगे, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, और इसलिए आज का समय भारत का सबसे स्वर्णिम अध्याय का समय है।
श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती नग्गी गांव में 1971 के युद्ध की स्मृति में नग्गी डे मनाया गया। इस अवसर पर सेना की ओर से चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में सेना चिकित्सकों ने ग्रामीणों की निशुल्क जांच और उपचार किया। गांव में हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्रों और मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं जवानों ने मलखंब खेल का प्रदर्शन किया। गढ़वाल राइफल्स ने खुखरी डांस, 21वीं सिख रेजिमेंट के जवानों ने गतका मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियां दी। नग्गी डे पर 1971 के युद्ध में सहयोग करने वाले ग्रामीणों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि ये दिवस 28 दिसंबर 1971 को नग्गी के प्रसिद्ध युद्ध में राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सेना के वीर सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है। उत्तरी हवाओं और पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। आज राज्य में सबसे कम 2.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज हुआ। करौली में 2.4, पाली में 3.6, दौसा में 3.9, बारां के अंता में 5.1, चूरू में 5.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं आज भीलवाड़ा में सुबह बादल छाए रहने से दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल मौसम शुष्क रहेगा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में जनवरी के पहले सप्ताह में घना कोहरा छाया रह सकता है। घने कोहरे के कारण देश के कई हिस्सों में सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे स्टेशन जाने से पहले ट्रेनों की मौजूदा स्थिति की जांच जरूर कर लें। सिरोही जिले के माउंट आबू में कल से शरद महोत्सव की शुरुआत होगी। 3 दिन चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होंगी। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि महोत्सव को लेकर पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल है।
जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग व नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में यह महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ होगी, जिसमें देश भर से आए कलाकार अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वहीं इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों के साथ साथ पर्यटकों में भी भारी उत्साह नजर आ रहा है। नव वर्ष के आगाज के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से केरल में तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत 5 मैचों की श्रृंखला में पहले ही 3-0 से जीत चुका है। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच मंगलवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से भरतपुर के नदबई में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में जैविक खाद के उपयोग को लेकर किसानों को जागरूक किया गया। संगोष्ठी में नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह ने किसानों को बताया कि जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार, जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी, पोषक तत्व उपयोग दक्षता में इजाफा होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साल 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा, खेलों और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में उपलब्धियों का वर्ष रहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक। अरावली पर्वतमाला मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढ़ा और सिरोही जिले के माउंट आबू में कल से शरद महोत्सव की शुरुआत होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।